ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय या यूं कहें कि भारतीय उपमहाद्वीप का समुदाय जितना बड़ा है उतना ही विविध भी है, और उसके त्यौहार और उसकी जो अलग अलग चीजों से जुड़ने की क्षमता है वो भी अद्भुत है। मेलबर्न शहर में मधेशी समुदाय पिछले कई सालों से छठ का पर्व करता रहा है, छठ का फेस्टिवल मनाता रहा है, मगर इस बार उन्होंने जिस बड़े स्तर पर इस फेस्टिवल को मनाया तो शायद सबकी नजरें उस तरफ गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना मधेशी समुदाय के रंजन श्रीवास्तव साहब को बुला लिया जाए और उन्हीं से पूछा जाए आखिर कैसा होता है छठ और क्यों होता है। वो आयोजक रहे हैं तो उनसे आयोजन के बारे में पूछेंगे, मगर हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, स्नेहलता जी और नीरा श्रीवास्तव। वो दोनों इस फेस्टिवल के महत्व को बताएंगी। आप तीनों का ही सबसे पहले SBS हिंदी पर स्वागत है।
जी धन्यवाद।
रंजन साहब, सबसे पहला सवाल आपसे कि दिवाली, होली, इन सब के बारे में हम जानते हैं, छठ पर्व क्या होता है और इसका आयोजन क्यों किया जाता है और आपने यहाँ मेलबर्न में किया, क्या महत्व है?
छठ पर्व का आयोजन जुड़ा हुआ है बहुत ही ऐतिहासिक धार्मिक परंपरा से, जिसे कि सूर्य देवता का आह्वान किया जाता है जिसमें, और सूर्य देवता का आह्वान इसलिए किया जाता है कि सूर्य का शक्ति, सूर्य का प्रकाश से सारा संसार लाभान्वित है, सारा संसार सूर्य के बदौलत एग्जिस्ट करता है। तो सूर्य का प्रकाश से, शक्ति से इस इकोसिस्टम और ब्रह्मांड को जिस तरह से जीवित और एग्जिस्टेंस मिला हुआ है, उस बाबत हम लोग हरेक साल दीपावली के छठा दिन, इसलिए छठ पूजा कहा जाता है, दीपावली के छठा दिन शाम को सूर्यास्त के समय हम लोग अर्घ देकर उनको थैंक यू बोलते हैं कि आपने एक वर्ष हम लोगों को जो जीवित रखा या इस प्लैनेट को एग्जिस्टेंस में जो आपका योगदान रहा, इस बाबत आपको हम लोग विशेष रूप से धन्यवाद दे रहे हैं। और दूसरे रोज सुबह फिर सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय हम लोग उनको अब अगला एक साल फिर हम लोगों को इसी तरह जीवित रखे, प्लैनेट को एग्जिस्ट रखे और अपना प्रकाश और अपना शक्ति हम लोगों को बनाए रखे, इस हिसाब से हम लोग उनको वेलकम करते हैं जो अगला एक साल के लिए हम लोग उनको अपने बीच में पाए और अपने आप को हम लोग उनके प्रभाव से शक्ति संपन्न करें या इस प्लैनेट को बरकरार रखे, इस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट डे सूर्योदय में हम लोग उनको वेलकम करते हैं, प्राय देखा जाता है।
रंजन जी, आपको के पास दोबारा से लौटूंगा मैं, स्नेह जी से पूछता हूँ, और कितना कठिन होता है? ऐसा माना जाता है कि जितने व्रत होते हैं, जितने त्योहार होते हैं, उसमें से सबसे कठिन है छठ को निभा पाना।
ये एक बिहार का ऐसा व्रत है जो बहुत ही कठिन माना जाता है। ये 4 दिनों का व्रत होता है, पूरे 4 दिनों तक ही मनाया जाता है, इसीलिए इसे महापर्व कहा जाता है। पहले दिन हम खरना या नहाय खाए करते हैं, जिसमें कि हम कुछ लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, नॉर्मल सब्जी, कद्दू की सब्जी या लौकी की सब्जी, चावल दाल के साथ खाया जाता है। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन में प्रवेश करते हैं जो खरना कहलाता है। उसमें है कि बिहार के अलग अलग भागों में लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं, लेकिन जो मैंने अपने बचपन में देखा है माँ को करते, अपनी नानी को करते, मैंने यही देखा है कि वे लोग रोटी को जोड़ी बनाकर और खीर उसके ऊपर रख के और केला लेके फिर शाम को वो लोग पूजा करती थी सूरज भगवान के डूबने के बाद। और फिर जो सबसे कठिन होता है वो होता है तीसरा दिन। और मैं आपको बता दूं कि दूसरा या तीसरा दिन लोग निर्जला व्रत रखते हैं जो कि चौथे दिन तक चालू रहता है। तो तीसरे दिन की तैयारी बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि उस दिन आपको निर्जला रह के सारे पकवान बनाने होते हैं जो कि बहुत ही शुद्ध और पारंपरिक तरीके से बनते हैं। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पकवान होता है ठेकुआ, जो कि आटे, गुड़ और पानी से उसमें घी डाल के बनाया जाता है। तो इस सारी प्रक्रिया को करने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे हमारा मानना है, क्योंकि यही एक पर्व है जिसमें कि बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। तो हम तीसरे दिन सारी तैयारी करके आपकी जैसी इच्छा हो, जैसी आपकी क्षमता हो, उसी हिसाब से हम जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, उनमें भी कुछ चीजें होती हैं जो कि हम नहीं यूज कर सकते हैं, उन सबको हम जमा करके और जैसी भी आपकी क्षमता हो वो लेकर हम किसी भी ऐसे स्थल पे जाते हैं जहाँ पानी हो, जहाँ कि आप पानी में खड़े हो सके और वहाँ पर हम खड़े होकर सूरज भगवान को, डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ देते हैं।
जी स्नेह जी, आपको यहाँ पर रोकूंगा और नीरा जी से पूछूंगा कि जहाँ तक की कहानी स्नेह जी ने बताई है कि सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है, उसके आगे की कहानी आप हमें बताएं।
जी जरूर। उसके आगे जैसे स्नेहा जी ने बोला बिहार में ऐसे होते हैं, लगभग मिलता जुलता नेपाल में भी यही होता है, बस थोड़ी सी वहां पर चेंज आ जाती है आपको सेकेंड डेज यानी खरना के दिन। जैसे किसी के घर में रोटी बनती है और दूध की खीर, तो किसी के घर में पूरी और गुड़ की खीर बनती है जिसमें दूध का बिल्कुल यूज नहीं होता है। तो जैसे मैंने किया है तो मैंने गुड़ की खीर और पूरी बनाकर मैंने किया, ये नेपाल की है
जी,
परंपरा
जी।
और फिर थर्ड डे इसी तरह सारे, स्नेहा जी ने बिल्कुल सही बोला, हम लोग भी पूरी उसी तरह करते हैं, पूरी शुद्धता के साथ करते हैं और पूरे पकवान बनाकर वो हम उन सब्जियों का यूज करते हैं जो हम लोग एक महीने मतलब दशहरा के बाद हम लोग वो सब्जियां छोड़ देते हैं, जब से ये कार्तिक स्टार्ट होती हैं
जी,
हम लोग वो सारी सब्जियों को यूज करते हैं।
तो असल और... में ये जो त्योहार है वो है किस चीज का, क्या ये भगवान को या प्रकृति को धन्यवाद देने का त्योहार है, क्या सोचते हैं? बहुत संक्षेप में एक एक लाइन में अगर आप तीनों बताएंगे तो।
जी जरूर। ये त्योहार अगर देखा जाए तो किसी जमाने में ये त्योहार बिल्कुल बेटों के लिए, पुत्र के लिए किया जाता है
जी।
अभी के संदर्भ में क्या होता है कि अभी हम लोग प्रकृति को उसको धन्यवाद देने के लिए, जैसे सूर्य भगवान को धन्यवाद देने के लिए हम लोग करते हैं
जी। स्नेह जी आप क्या कहेंगी, एक लाइन में बताइएगा।
मेरा तो यही मानना है जो मैंने सीखा है कि हम इसलिए ये पर्व करते हैं और यही एक पर्व है जिसमें कि हम साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारी आगे पिछली जो भी गलतियां हैं उनको माफ करें और आगे हमें सुखी जीवन प्रदान करें, ऐसा मेरा मानना है, मेरी माँ ने कहा है।
बहुत ही बढ़िया। रंजन साहब आपसे आखिरी लाइन पूछ रहा हूँ कि आपके आयोजन का वजह क्या है?
मेरा आयोजन का वजह है कि हम लोग अपने देश स्वदेश से विदेश में आ गए हैं, तो अपना संस्कृति, अपना भाषा, अपना परंपरा को हम लोग कायम रखें और अपने आने वाले संतति को हम लोग ट्रांसफर कर सके, जो कि इस चीज को वो लोग भी लेकर चले और हमारा संस्कृति विश्वव्यापी बरकरार रखे, जहां भी रहें हम लोग अपने संस्कृति को, भाषा को, अपने पहचान को कायम रखें, हम लोग अपना आइडेंटिटी को बना के रखें।
धन्यवाद आप सभी का बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
धन्यवाद।